राधिका हयन कृष्णेर प्रणय विकार, राधिका हयन कृष्णेर प्रणय विकार। अब अर्थ थोड़ा सा बतला रहे हैं, राधा कमा न, राधा के बाद में कमा, कृष्ण प्रणय विकृति अथवा राधा हाइफेन कृष्ण, राधा कृष्ण प्रणय विकृति न, ये प्रणय विकृति ही लादिनी है। कृष्ण का यदि हम कहें ये राधिका कृष्ण की प्रणय विकृति हैं, ठीक तो है, तो प्रणय अकेले नहीं होता, इस बात को समझो। राधा जी नहीं है, राधा जी कृष्ण की प्रणय की विकृति हैं ऐसा मान लें, जैसा कि यहाँ पर समझा जा रहा है शब्दों के ऊपर के अर्थ से। खूब गंभीर में डूबने की चेष्टा करो। उन्होंने प्रेम किया, प्रेम किया माने क्या, कोई और है, और कहा कौन रहा है, एक तीसरा व्यक्ति, उन्होंने प्रेम किया। अरे भाई किससे प्रेम किया, कैसा प्रेम किया, ये तो चीज है ना, पूज्य है नहीं है। वैसे यहां पर भी देखो, राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा, प्रणय विकार मैंने सुनो, जैसे कोई माता है छोटे से नंगते बच्चे को, अपने बच्चे को मैया मैया ऐसे करते हैं, तुतली भाषा में कुछ मुस्कुराता हुआ मैया के तरफ में आया और ऐसे ऐसे मानो अब गिरा न, मैया क्या करेगी, मुस्कुराती हुई और बच्चे को ऐसा करेगी, जब बच्चा निकट में आएगा तो मैया सड़क पीछे हट जाएगी, जरा चलना सीखे, अब मुस्कुराती रहेगी, हाथ ऐसे है कि कहीं गिर जाए तो चट पकड़ ले, ये जो हंसना है, आंखों में प्रेम के आंसू आने हैं, बच्चे को देख करके शरीर में रोमांच हो रहा है, ये विकृति है। अर्थात अष्टत्व सात्विक और संचारी भावों का होना इत्यादि भाव माने रसमय भाव का होना। कृष्ण आ रहे हैं, आ कृष्ण को उठा लिया मैया ने, और अभी दो दांत कृष्ण के हाथ टूटनी दो दिखा करके थोड़े से कृष्ण ने मुस्कुरा दिया, मैया उनके ऊपर में फिदा हो गई, प्रेम की वर्षा लेकर के बच्चे को गोदी में चुंबन करने लगी, उसका शीर खूबसूरत, ये सब है प्रणय का विकार। वैसे राधा जी को देख करके कृष्ण को और कृष्ण को देख करके राधा जी के जो भाव होते हैं, अष्टसात्विक विकार परस्पर में होते हैं, अनुभव संचारी भाव होते हैं, प्रेम में एकदम डूब जाते हैं, पुलकित रोमांचित हर्षित हो जाते हैं, उन भावों को कहा गया यहाँ पर विलास, और विलास का यह विकृति, यह प्रणय की विकृति है। जैसे छेना है, छेने को मल करके अच्छी तरह से कर करके उसको स्पंज बना करके, स्पंज कैसे बनता है, कोई पद्धति है, स्पंज बना करके और उसको रस में डाल दिया और उसके प्रत्येक अणुओं में परमाणु में रस सिक्त हो गया, और उसको उठा करके ऐसा होता रस सब मुख में डाल दो, बस कितना शुद्ध, ये है उसका विकार, छेने का विकार है। छेना खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, किंतु उसका विकार जो है छेने का, बड़ा रसमय सुस्वादु हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर राधिका है न कृष्ण प्रणय विकार, प्रणय का विकार राधा जी ने मान कर लिया, कृष्ण मना रहे हैं, राधा जी ने मुख इधर कर दिए, कृष्ण उनको चरणों पकड़ रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, राधा जी के आंखों में आंसू भी हैं, कुछ हंसी भी है, कुछ क्रोध भी है। अब कृष्ण के आंखों में आंसू की बूंदें झलक रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये प्रणय का विकार है। प्रणय का विकार ही ने रूप धारण कर लिया, इस प्रणय को ही महाभाव को, महाभाव जब रूप धारण कर लिया तो रूप उस रूप को श्रीमती राधिका कहते हैं, नहीं इसी को लादिनी शक्ति कहते हैं। लादिनी माने क्या? वही भाव कृष्ण को उन्मत्त करा देता है, राधा जी को भी उन्मत्त करा देता है एक ही चीज, अप्राकृत तत्व है, दोनों मिलकर के एक, किंतु दोनों दो रूप धारण किए हुए हैं। इसलिए राधिका हैन कृष्णेर प्रणय विकार स्वरूप शक्ति लादिनी नाम जहा, ये स्वरूप शक्ति है, हमारी दृष्टि शक्ति है, हमारी लड़ने की शक्ति है, हमारी क्रोध की शक्ति है, हमारी उदारता की शक्ति है, कृपा की शक्ति है, किंतु ये मूर्ति धारण नहीं कर सकती। किंतु कृष्ण की शक्तियां क्या करती हैं? बस मूर्ति धारण कर लेती है, ये विशेषता है। हमारी शक्ति सीमित अणु है, इसलिए राधिका जी कौन है? राधा कृष्ण के प्रणय के विकार हैं, जिनको स्वरूप शक्ति या लादिनी शक्ति कहा गया। लादिनी क्यों? लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, लादिनी द्वारा करे भक्ते रपोषण। लादिनी शक्ति क्या? और लादिनी शक्ति कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, यह लादिनी शक्ति ही कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती है, न रहे नहीं होगा। यह लादिनी शक्ति ही मूर्तिमान रूप में राधा जी हैं, और राधा जी मूर्तिमान होने पर भी उनमें भाव जो है वो लादिनी का भाव है। राधा जी लादिनी शक्ति अपने तरह तरह के भावों से, कोटि कोटि भावों से कृष्ण का सब प्रकार से आस्वादन कराती है। यही लादिनी कोटि कोटि गोपियों के रूप में भी, उनका भी कोटि कोटि भाव एक एक गोपी हुआ, और तब उन भावों से कृष्ण को लादित कराती हैं। और क्या करती हैं? यह लादिनी शक्ति लादिनी द्वारा करे कृष्णेर पोषण, भक्तेर पोषण। यह लादिनी शक्ति जो है कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण की इच्छा मात्र से ही अणु अणु रूप में प्रत्येक जीवों के अंदर में उसी भक्ति का, उसी लादिनी के भाव को, जिसको भक्ति कहते हैं, कण कण में होने पर जीवों के हृदय में प्रक्षेप करती हैं। प्रक्षेप करना मैंने क्या? एक बूंद जल ले लो और ऐसे कर दो तो क्या होगा? लाखों टुकड़े होकर के गिरे, जिसको क्या कहते हैं, फुहारे में मुख से लेकर के एक कुल्ला पानी फुर्र कर उड़ाओ, देखो ये कितना हो जाता है। ऐसे ही एक ही भाव जीवों में, अनंत कोटि जीवों में वो प्रेक्षण करती हैं। इसलिए इसका मतलब एक ये हुआ, जीव के हृदय में लादिनी शक्ति नहीं है, ना? नहीं है, ऐसे समझो। इसलिए भक्त का उस लादिनी शक्ति उसमें संचरित करके उसका पोषण करती हैं। कहीं कहीं पर ऐसा कहा गया है, जीव के स्वरूप में सभी कुछ है, क्योंकि भगवान का अंश है, इसलिए भगवान का अंश होने से भगवान के में जो जो चीजें हैं, सच्चित आनंद संभिसंधनी लादिनी, जो कुछ भी है वो सब जीवों में होना चाहिए। किंतु स्व विचार करते समय एक और विचार करना है, भगवान स्वरूप शक्ति से युक्त जब होते हैं तब उनमें समस्त जितनी भी उनकी शक्तियां हैं वो सब भगवान में रहती हैं। तब जो अंश होता है उसको स्वांश कहते हैं, उसको कहेंगे स्वांश। समझ में नहीं आएगा सहज रूप में, किंतु खूब अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करो, और यदि आंख बंद करके नीचे यदि देखेगा ना, जैसे बहुत से लोग देख रहे हैं, तब तो एकदम समझ में नहीं आएगा। यदि कुछ कुछ आता भी, यहाँ आंख बंद किया ना, ऐसे कर दिया तो नहीं आएगा। इसलिए वक्ता की ओर अच्छी तरह से चातक की भांति प्यासा होकर के यदि कोई देखे तो कुछ कुछ आएगा। पूर्व संस्कृति की भी जरूरत है समझने के लिए। एक ही बात कह रहे हैं सभी लोग में से, कोई एक दो आदमी समझेगा कोई नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाया तो सभी लोग समझ गए और सभी लोग बैकुंठ को उनके तरफ में चले गए, बैकुंठ पार गोलोक वृंदावन में। गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया तो केवल धुंधकारी गया और बाकी रह के गए, इसीलिए कि उनको समझ में नहीं आया और अच्छी तरह से सावधानी से सुना नहीं। आज तो रोज रोज सुनते हैं ये क्या बात है, तो मतलब ये कुछ समझ में नहीं आया, खूब सावधानी के साथ में सुने। नहीं समझ में आया फिर वैष्णव से जो सुने हैं, जो सीनियर हैं उनसे सुनिए, उस पर भी समझ नहीं आया तो फिर वक्ता से पूछिए। तो मैं बतला रहा था ये स्वरूप शक्ति जीव में है कि नहीं, वो हलादिनी है कि नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं जो भगवान का अंश होने के नाते इसमें भी होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। समुद्र से पानी ले लो तो समुद्र के पानी में नमकीन खार इत्यादि जो जो गुण हैं वो सब उसमें होगा, एक बूंद में भी। किंतु उसमें मगर, सीप, दरियाई घोड़ा, दरियाई सांप और सब जो होता है उसे जो मेघ संचरित होता है, लहर, ये सब होगा नहीं होगा। है तो सभी चीज किंतु ये सब चीजें नहीं। यदि एक बूंद पानी आग में डाल दिया जाए तो आग उसको खा जाएगी और अधिक पानी डाल दो तो आग बुझ जाएगी, पानी आग को खा जाएगा। इस तरह से समझो भगवान जब स्वरूप शक्ति के साथ उनमें सच्चित आनंद परिपूर्ण रूप में रहता है, उनमें हलादिनी संबित संदिनी इत्यादि शक्तियां रहती हैं, समस्त शक्तियों से वो जब युक्त होते हैं उनका जो अंश होता है वो है स्वांश। ये स्वांश कृष्ण के बलदेव प्रभु जी, नारायण, चतुर्भुज इत्यादि और जितने कुर्म मत्स्य अवतार इत्यादि, युगावतार, मन्वंतरावतार इत्यादि, शेष सीमा शेष तक अनंत देवता, ये सभी स्वांश हैं, ये भगवत स्वरूप ही हैं। ये सभी क्या वो गतिदायक, हतारी गतदायक इत्यादि, उनमें भगवान के सभी गुण हैं। जिस रूप में वंश है उसी अंश में ये सभी गुण हैं। और जीव है विभिन्नांश, विभिन्नांश माने क्या, जब एक तटस्था शक्ति जीव शक्ति भगवान से युक्त रहती है उस समय उनका अंश जो होता है वो जीव है, ये विभिन्नांश भगवान का अंश ही ममयवांश हो, इसको समझो। केवल केवल उनकी तटस्था शक्ति की परिणति जीव है ऐसा नहीं, भगवान में जब तटस्था शक्ति अथवा जीव शक्ति होती है और उस समय उनका जो अंश होता है ये विभिन्न अंश होता है, स्वरूपगत बहुत अणु होता है। तो इसमें मान ले कि थोड़ा रहेगा भी किंतु उसका कार्य नहीं होता, जैसे एक परमाणु पानी में नौका नहीं चलेगी, सीप नहीं होगा, दरियाई घोड़ा और सांप नहीं होंगे, तरंगे नहीं होंगी, उसी तरह से माया के द्वारा ये आवृत हो सकता है विभिन्न अंश, किंतु स्वांश कभी भी नहीं होगा, वो माया का पति ही रहेगा, माया उसको कभी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ पर कहते हैं और कहते हैं है? पोटेंसी है, शक्ति प्रकाशित नहीं है, इसको इस रूप में समझो। सब चीज की पोटेंसी है क्योंकि भगवान का भी तो अंश है ना, पोटेंसी के रूप में है किंतु प्रकाशित रूप में नहीं है, और स्वांशों में ये सब भी चीजें परिपूर्ण में प्रकाशित है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर जीव गोस्वामी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी इसको कोट कर रहे हैं, अभी पाठ करेंगे तो कुछ निरस हो जाएगा, तो अभी हमने कुछ बतलाया है और कुछ थोड़ा सा बतला देता हूँ, ये अपने समझने के लिए ये सब चीजें हैं, ये दार्शनिक सिद्धांत हैं, गौड़ीय वैष्णव की भित्ति है, इसको समझना चाहिए। इसमें प्रभुपाद जी ने पहला संदर्भ तत्व संदर्भ, कृष्ण संदर्भ और विशेष करके परमात्मा संदर्भ, प्रीति संदर्भ, इन सब चीज़ों से लेकर के इसकी तुलना दे करके बतलाया है। जी गोस्वामी के ये सब शब्द कोट किए हैं और तब ये बतला रहे हैं। यदि कहो तो थोड़ा सा पढ़ें, किंतु इसी में चला जाएगा यही समझ में, किंतु समझना भी बहुत ज़रूरी है। सिद्धांत ठीक नहीं रहेगा, रसमय की कथा सुनेंगे वो बेकार का जड़ी रस बन जाएगा। आधार यदि ठीक रहा, सिद्धांत यदि ठीक रहा, उस पर यदि चलेंगे तो स्थायी भक्ति रहेगी, नहीं तो भक्ति भी स्थायी नहीं रहेगी। इसलिए विचार पूर्वक इनको समझ करके चलना चाहिए। विषय खूब गंभीर है तो भी समझने की चेष्टा करनी चाहिए। एक बार, दो बार, दस बार, बीस बार नहीं हुआ तभी इसको समझने की चेष्टा करेंगे, बार बार अपने आप वो समझ में आ जाएगा। इसलिए आज का वर्तमान पढ़ा लिखा समाज इतना चेष्टा नहीं करना चाहता, इसलिए इन चीज़ों को समझ नहीं कर पाता। इसलिए कहते हैं संस्कृत डेड लैंग्वेज है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। किंतु ये भाषा जो अमृतमयी है वो धारणा नहीं कर सकते। पद पद में इसमें रस है, अलंकार है, अनुप्रास है, लोग नहीं समझ पाते। और इसी में हित है। वेद इत्यादि शास्त्रों की भाषा कैसी है? साहित्य है। साहित्य माने क्या? हित माने परलोकगत हित, ये जागतिक हित, सब कुछ उसमें वर्तमान है। आजकल जो सिनेमा और ये सब की पुस्तकें बनती हैं, साहित्य, ये साहित्य है? ये विष है, ये सब साहित्य नहीं। वेद में कथित हुआ है, कहा गया है कि भक्ति रे वैनंग नयति, भक्ति रे वैनंग दर्शयति, भक्ति पुरुषा भक्ति एव भूयसी इत्यादि। भक्ति ही भगवान, जीव को भगवान के पास में ले जाती है। बिना भक्ति के कोई भी जीव भगवान तक नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच सकता है। जो भगवान की यह भक्ति क्या चीज है? इस भक्ति में आधार के रूप में क्या संधिनी और ऊपर में संबित और ह्लादिनी का भाव सार मिलित हुआ है, तब इसको कहेंगे भक्ति। और इसके ऊपर में और सब जो इसकी वस्तुएं हैं, द्रव्य हैं, संचारी, अनुभाव, विभाव, सात्विक, जब उचित परिमाण में एक जगह एकत्रित होंगे, मिलाए जाएंगे, तो उसको कहते हैं भक्ति रस। यही भक्ति रस लादनी शक्ति का मूल चीज है। जो शक्ति, जो वस्तु शक्ति भगवान को अपने आनंद के द्वारा उन्मत्त कराती है, उसका लक्षण क्या है? जी गोस्वामी जी संस्कृत में देने, उसका अनुवाद में पढ़ रहा है। माया भगवान को अतिक्रम नहीं कर सकती, माया भगवान को जना नहीं सकती। कौन माने? जड़ा माया, दुर्गा काली इत्यादि जो जड़ा माया है, जगत की अधिष्ठात्री जो महामाया है, माया माया द्वारा भगवान को नहीं जान सकते। वो भगवान से दूर एक विक्षेपात्मिका शक्ति द्वारा फेंक करके उसको आज स्वरूप को आवृत कर देती है, इसको कहते हैं आवरणा। उनको दुख क्लेशों को भुगाती है। और जोग माया जो शक्ति है, ये क्या करती है? भगवान से जोग युक्त कर देती है। यही जोग माया भक्ति का स्वरूप है। सांख्य के विचार से वस्तु शक्ति को प्राकृत सत्ता विशिष्ट माइक आनंद कहते हैं। कैसे? गोबर, गाय ने गोबर किया, गोबर से कुछ दिनों के बाद ही, दो तीन दिन रख दो, पुराना होने पर गोबरौरा उसमें निकल जाएगा। और थोड़ा सा गोल गोल कर करके गोबर का टुकड़े को और गोला करता हुआ खींचता हुआ इधर उधर ले जाएगा। ये गोबरौरा कहाँ से निकला? वैसे लोगों का कहना है अपने आप वस्तुओं के सम्मिश्रण से ये आत्मा उत्पन्न हो जाती है, उसमें ये ज्ञान इत्यादि आता है, और फिर वो जबकि हट जाते हैं एक दूसरे से तो उनका विनाश हो गया। असल में आत्मा शून्य है, शून्य से आया और फिर शून्य में अधिकांश सांख्यकार इत्यादि भी इसी रूप में ले लेते हैं वस्तुओं को। लेकिन वस्तु कहाँ से आया, पदार्थ द्रव्य जो है कहाँ से आए, पदार्थों में गुण कहाँ से आया, इस पर वो विचार नहीं करते। इसलिए जो आनंद है ये मन का जो आनंद या शरीर का आनंद ये नहीं, असल में आनंद की कोई मूल चीज है वो क्या है, वही है ह्लादिनी शक्ति, ह्लादिनी शक्ति स्वरूप शक्ति की एक वृत्ति। उसको स्वीकार नहीं करने से ये आया कहां से, सामंजस्य। यदि कहा जब वो कहां से आ गया, वो कहां से आया, कृष्ण सब कारणों के कारण है किंतु कृष्ण का कारण कौन है, तो ये अनुचित प्रश्न हो गया। क्यों अनुचित होगा, आधुनिक लोग ये कहेंगे भगवान का स्वरूप वेद है, वेद है माता, माता जैसी कार्य मानो, नहीं तो तुम पिता पर संदेह हो जाए, ये पिता कहां से आया, वो समझता है जड़ जगत या मैया से आए, असल में ये बेटा कहां से या बेटी कहां से आई, संतनी संतान कहां से आई, मैया के आधार पर पिता ने इसको रखा उसे ये आया, ये साधारण चीज है। इसलिए कह रहे हैं जैसे वो मूल चीज कहां से आया, वही वस्तु है, वस्तु की शक्ति, शक्ति से ही इसकी हल्लादिनी वृत्ति है, उसी से जगत में आनंद है। मन में आनंद नहीं है, शरीर में आनंद नहीं है। इस तरह निर्विशेषवादियों का विचार लिया शंकराचार्य इत्यादि का, ये निर्विशेष चीज से सभी शेष हुआ और उससे ये आनंद जो देख रहे हैं उसी से आया। नहीं नहीं इसको भी मत समझो, निर्विशेष यदि है उसमें कोई गुण ही नहीं है तो कहां से आएगा, कोई गुण नहीं है, शक्ति नहीं है, रस नहीं है, विकार नहीं है, ये कहां से आएगा, इसलिए उसका भी खंडन किया जी गोस्वामी ने। यदि कहो ये जीव स्वरूप का आनंद है, ये आनंद जो अभी दिख पड़ता है ये जीव स्वरूप का आनंद है, नहीं ये जीव स्वरूप का आनंद नहीं है। क्यों, ये हेतु नित्य होने पर, जीव नित्य है भगवान की तरफ में, किंतु जीव अत्यंत क्षुद्र है, उसमें स्वरूप शक्ति नहीं ठहर सकती, इसलिए सर्वशक्तिमान भगवान में ही केवल एकमात्र ह्लादिनी संदिनी और संबित शक्तियां हैं शुद्ध रूप में। जीवों में कैसे हैं, कुछ विकृत होकर के सत्व रज और तम के रूप में अभी हैं, इसलिए भक्ति का आश्रय करने पर क्रमशः ये दूर हो जाती हैं और प्रभु का जो अपनी कृपा से स्वरूप शक्ति के द्वारा वो संदिनी ह्लादिनी और संबित तीनों को निक्षेप करते हैं जीवों में, उसको धारण करने की पोटेंसी जीवों में है। कैसे, आम, इमली, बबुल इत्यादि के बीज होते हैं, बीज को मिट्टी में रख दो, पेड़ जो निकला वो कहां से आया, मिट्टी से आया ना पानी से आया, बीज से ही आया। इसको प्रकाशित किसने किया, जल ने, मिट्टी ने, हवा ने, सूर्य की रोशनी से, इन पांचों तत्वों ने उसको पोषण करके तब फिर इसको ने? इसी तरह से जीवों के हृदय में जो ये तीन चीजें हैं वो भी भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में अच्छी तरह से समझाया। स्वरूप शक्ति तो नहीं है किंतु स्वरूप शक्ति की आंशिक प्रवृत्ति जीवों के स्वरूप में है, आज यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाए। इसलिए स्वरूप शक्ति का यह भाव उसमें है पात्रता के रूप में, और जब वो शक्ति संचरित होती है तो जिस प्रकार से सीप में वो मोती हो जाती है उसी प्रकार से जीव के हृदय में वो भक्ति के रूप में ह्लादिनी शक्ति वर्धित होकर के कृष्ण को भी आनंदित करती है। इसलिए जीव स्वरूप में वो नहीं है, नहीं तो फिर निक्षेप करने की बात क्यों आती, स्वरूप शक्ति की वृत्ति देते हैं ऐसा क्यों कहते। इसलिए समझो ये अव्यक्त रूप में पोटेंशी के रूप में है, जरूर है, नहीं यदि रहे तो किसी भी चीज से कोई भी चीज हो जाएगी। आ रहा समझ में, यहीं पर सत्कारण बाद को नहीं मानना हुआ है, किस रूप में है किस रूप में नहीं है इस पर विचार करना पड़ेगा।
इसलिए भगवान में संपूर्ण रूप से यह जीव में अणु से अणु रूप में है, लेकिन तो लैटिन पोजिशन में है, ये उसी के ऊपर में ये भक्ति होगी। सबसे पहले जीव के हृदय में संबित के रूप में, शुद्ध सत्व के रूप में ये संधिनी आती है, संधिनी, और उसके ऊपर में फिर संबित भाव के रूप में, और उसमें आनंद मिल करके ये तीनों चीज एकत्रित होने पर भक्ति होती है। ये राधिका जी की स्वयं की वृत्ति है, और इसी के द्वारा कृष्ण को भी आनंद मिलता है, इसलिए भक्ति के द्वारा कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। भगवान इसी शक्ति के द्वारा, स्वरूप शक्ति की लादिनी वृत्ति के द्वारा तत्त आनंद, अन्य भक्त तत्त आनंद क्या, दास सख्य बात्सल्य मधुर, अन्य भक्तों को प्रदान करके और उसमें उद्बोधित करते हैं, यही सत्य सिद्धांत है। भगवान में लादिनी शक्ति नित्य वर्तमान है, इसी को निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी लोग नहीं स्वीकार करते। वो कहेंगे क्या, वो निर्गुण निरंजन अव्यक्त अनादि हैं और शक्तिहीन हैं, विलासहीन हैं, जितना अ है सब उसमें लगा देते हैं। अच्छा, बहुत है किंतु मैंने जो हमको जरूरत है उतना लिया। तहलादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन स्वयं रूप में करती हैं, और अपनी कुछ जीव के हृदय में संचरित करके लादिनी शक्ति का, संबित और संधिनी का जीव के हृदय में उसे प्रकटित करा करके उसके द्वारा भी कृष्ण को आनंद करती हैं। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद, एक ही चीज शक्ति तार धरे तीन रूप, एक ही शक्ति उनकी तीन रूप धारण करती है, संधिनी, संधिनी संबित और लादिनी। संधिनी कहते हैं सत्ता को प्रकाश करने वाली शक्ति। जगत में हम जो कुछ सत्ताएं देखते हैं, आंखों से, हाथ से पकड़ते हैं या छूते हैं, देखते हैं, ये सब क्या चीजें हैं, ये संधिनी का आंशिक और विकृत प्रतिफलन है। विकृत क्यों, ये नष्ट हो जाते हैं, ध्वंस हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और जो मूल चीज को वो प्रकाशित करती है गोलोक बैकुंठ में, भक्तों के शरीर को, वहाँ के पृथ्वी को, वहाँ के मट्टी, जल, वायु और वृक्ष, नदी, नाले, गाय, माता पिता, भाई बंधु, ये सब क्या है, उनका स्वरूप, ये चिन्मय होने से नित्य है। जीव के हृदय में ये मिश्र हैं और इस जगत में जड़ हैं, स्थूल हैं, एक ही चीज शक्ति तार धरे तीन रूप, आनंद अंश हलादिनी, असद अंश संधिनी, चित अंश संबित, जरे ज्ञान करी जानी। तो संबित संधिनी से हुआ ये सत्ता विस्तार करने वाली शक्ति को समझो, और संधिनी माने ज्ञान, और ज्ञान के ऊपर में भाव, ज्ञान माने ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ऐसे बढ़ते 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 ये जगत का ज्ञान होने का नाम ये ज्ञान। किंतु ज्ञान से काम नहीं चलेगा, जब वही ज्ञान जब हृदय में आता है तो इसको कहते हैं भाव, इस भाव से भक्ति का संबंध है। ये बुद्धि विवेचन इत्यादि करती है, ज्ञान विवेचन करता है अच्छा बुरा इत्यादि, और हृदय, हृदय में भाव है। आनंदान से हलादिनी, संदर से संधिनी, चिदन से संबित, माने पहले ज्ञान इसके बाद में भाव, और आनंद से आनंद समझो। अब हम लोग थोड़ा सा प्रेम विवर्त से इस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं, ये इस श्लोक को। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी इत्यादि श्लोक अखंड अद्वैय ज्ञान सर्वतत्व स्वार, अखंड ज्ञान जो है, बदंति तत्व विदस्त तत्त्वम यज ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। एक अखंड तत्व है, अखंड होने पर भी कैसा है, अद्वय ज्ञान तत्व है। अद्वय इसलिए कहा, नहीं तो जगत के लोग नहीं समझेंगे। दो है किंतु एक ही है, एक है फिर भी दो है, इसलिए अद्वय। इस बुद्धि से उसका हम सामंजस्य नहीं कर सकते हैं। गुरु परंपरा की युक्ति बुद्धि से और शास्त्र की बुद्धि से हम उसको समझ सकते हैं। अखंड अद्वय ज्ञान सर्वतत्व सार। अखंड ज्ञान किसको कहते हैं? जैसे मान लिया जी कृष्ण है, अब कृष्ण में उनकी सारी शक्तियां हैं, सारी शक्तियों के द्वारा ये विश्व ब्रह्मांड का सृजन भी करते हैं, उनसे नाना प्रकार के अवतार निकलते हैं, उनसे शक्तियां निकलती हैं, उनके स्वांश और विभिन्नांश ये तत्व भगवत अवतार और जीव ही निकलते हैं कोटि कोटि, और इन जीवों को अपने भोग के अनुरूप में तरह तरह के ऊपर से ये शरीर भी मिले हुए हैं और उनको ये भोग करा रहा है। ऐसा जेल खाना जिसमें हथकड़ी और बेड़ी तो नहीं, आसक्ति रूपी बेड़ी और हथकड़ी एकदम कस करके जंजीर से बांध दिया गया है, स्थूल नहीं, हथकड़ी बेड़ी से चल नहीं सकते, किंतु मन को हथकड़ी बेड़ी रोक लेगी। और प्रभु ने इस जगत में हमें दे करके हथकड़ी बड़ी क्या लगाया, चलो फिरो घूमो, किंतु ऐसी हथकड़ी जो तुम्हारा मन इधर उधर नहीं जाएगा, संसार में आसक्त रहेगा और अपने दुखों को भोगो, कहाँ जाएगा यहाँ से, भागने का कोई स्थान नहीं। ये सब को लेकर के भगवान भ भग वान, भग से युक्त गाड़ीवान, ऊंटवान, हाथीवान, पीलवान, पहलवान, जो पहल करते हैं ना ऐसे, वो पहलवान, गाड़ीवान है ना, ये सब ऐसे भगवान भग से युक्त। भग माने क्या? छह प्रकार के भग, छह प्रकार के गुण, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य और वीर्य, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, इनसे युक्त हैं जो जगत में किसी में नहीं है। और भगवान भ भरण पोषण करने वाले जगत के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भरण पोषण करते हैं, सबके जन्मदाता वही हैं, जगत की सृष्टि करने वाले भी वही हैं, ध्वंस करने वाले वही हैं, पालन करने वाले वही हैं। भ माने भरण पोषण करता, ग माने गमयिता, नेता, नेता माने सबका संचालन करने वाला, हवा का संचालन, पानी का संचालन, समुद्र का, टाइम का, सब काल इत्यादि सबको संचालन करने वाला। शाम सुबह ये होती है कैसे, इसका सब संचालन कौन करते हैं? सूर्य मत समझो, सूर्य को भी संचालित और चंद्र को भी जो संचालित करते हैं, सभी ग्रह नक्षत्रों का संचालन, ये है गौ। वह अखिल प्राणियों में जो वास करते हैं, अखिल प्राणी जिनमें वास करते हैं, ये सब मिला करके भगवान, ये समस्त विश्व मिल करके तब ये भगवान है। राजा, राजा माने क्या?
मंत्री, प्रजा, लोग,
मंत्री, प्रजा, राज्य, पुलिस इत्यादि सब मिलकर के सरकार। सरकार माने क्या? कोई चीज है ना, ऐसे ही भगवान एक सामूहिक ये शब्द है, जब समूह के रूप में लेते हैं तो इसको भगवान कहते हैं, और अन्यथा वो कृष्ण है, वही है कृष्ण। इससे बढ़कर के उनका और कोई दूसरा नाम नहीं है। सब जगत को आकर्षण करते हैं, अपने प्रेम के आकर्षण से सबको चला रहे हैं, ये है अद्वय ज्ञान। तो अद्वय ज्ञान अखंड, कभी खंड नहीं होता। अब इस चीज को हम काट करके खंड खंड कर देंगे, भगवान का खंड नहीं होगा। तो ये जीव और ये अवतार और ये सब कहाँ से आए? खंड नहीं है, खंड जैसा तुम देख रहे हैं किंतु है सब उसी के अंतर्गत में अखंड है, अखंड ज्ञान के अंतर्गत में सब कुछ है। उन्हीं को कोई परमात्मा, कोई ब्रह्म, किसी ने उनको भगवान और किसी ने उनको स्वयं भगवान कहा है। सही तत्व दंड प्रणाम बार बार, मैं सबसे पहले उसी तत्व के लिए दंडवत बार बार दंडवत और प्रणाम कर रहा हूं जो वो हमको ये चीज समझने के लिए ऐसी शक्ति दे। आज यही शक्ति की प्रार्थना करके हम लोग आज का वक्तव्य समाप्त करें पाठ, और कल इस चीज को अच्छी तरह से समझाएं। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो आ जाइए। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि। हा देवी काकू भर गदगदयाद्वाचा जाचे निपत्त भूवि दंडवतोड भटारती आस्या प्रसादमबुदस्य जनस्य गीत्वा गंधर्विके निजगणे गणनंदिने। अंगश्यामलिं छटाभिरभित मंदे कृतेन्दे वरम जाडं जागुडरोच संग विदधतं पट्टं वरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनं हृदि लसत् दामाभिरामोदरं राधा स्कंद निवेशितो जलभुजं ध्यायें भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरंगमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वंदे नमस्ते चरण गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव उत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमान। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं माम चरणं भजामि राधम ननेत्रं स्मरामि राधम मधुरस्मितास्यां वदामि राधम करुणाभराद्रं ततो मम नास्ति गतिः। अखंड अद्वय ज्ञान समझने के लिए ऐसे समझिए, एक ही परतत्व कृष्ण है, उनकी अनंत शक्तियों में से तीन प्रधान चीज शक्ति, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। चित शक्ति, माया शक्ति और बीच में जीव शक्ति तथा शक्ति, इनको कहते हैं। अपनी चित शक्ति के द्वारा, स्वरूप शक्ति के द्वारा कृष्ण अनंत वैकुंठ को प्रकाश कर खुद अपने स्वयं वृंदावन में ब्रजेंद्र नंदन के रूप में नित्य प्रकाशित रहकर और अपने अवतारों को वैकुंठ के विभिन्न प्रदेशों में स्थापित कर जो चिन्मय धाम वहाँ का है, चिन्मय शरीर है, चिन्मय सब कुछ है, उनको जो प्रकाश करते हैं अपनी चित शक्ति के द्वारा और अपनी माया शक्ति के द्वारा अनंत ब्रह्मांडों को प्रकाश करते हैं। उन ब्रह्मांडों में जीवों के शरीर
और ये विश्व की जो चीज़ें हम अपने आँखों से देखते हैं इन सबको अपनी जड़ माया से प्रकाशित करते हैं। और दोनों के बीच में विचरण करने वाले एक अपनी अचिंत शक्ति अघटन घटन शक्ति के द्वारा अपनी तटस्था या जीव शक्ति के द्वारा अनंत कोटि जीवों को प्रकाश करके उनको स्थूल लिंग शरीरों से आवृत कर ये यही मैं हूँ ऐसा उनमें अभिमान लगा करके दोनों जगत में विचरण करने योग्य बनाते हैं। ये जितनी चीजें हैं सब एक के अंतर्गत है, दो नहीं है, इन सब में अचिंत भेदाभेद है। इसलिए ये सब अद्वैत ज्ञान के अंतर्गत ये सब चीजें हैं। मैं उनको प्रणाम करके इस श्लोक का अर्थ बतलाने के लिए चेष्टा कर रहा हूँ। ये कौन कर रहे हैं? प्रेम विवर्त को बनाने वाले जगदानंद जी कर रहे हैं। सही तत्व कभू दुई राधा कृष्ण रूपे, ये तत्व कभी राधा कृष्ण के रूप में दो रूपों में है, और कभू एक परात्पर चैतन्य स्वरूप, और वही कभी एक परात्पर चैतन्य के रूप में, एक महाप्रभु के रूप में और दूसरे राधा कृष्ण के रूप में। दोनों तत्व अनादि अनंत सब समय है, आगे पीछे का प्रश्न नहीं है, दोनों एक ही साथ हैं। तत्व वस्तु सदा एक सदा अद्वितीय भाव, तत्व तो अद्वितीय है किंतु फिर भी राधा कृष्ण ये दो और चैतन्य महाप्रभु एक तीसरे, इन तीन रूपों में दिखाई पड़ता है। द्वितीय नहीं है, अद्वितीय माने जिसका दूसरा नहीं हो, एक ही है किंतु फिर भी एक ही तत्व वस्तु ये तीन रूपों में प्रतिभात है, एक साथ एक समान। वस्तु वस्तु शक्ति माझे किछु नहीं भेद, वस्तु और वस्तु की शक्ति में कोई भी भेद नहीं है, फिर भी भेद है। जब कहा जा रहा है कि दोनों एक हैं तो इसका मतलब जो दो क्यों कहा, तब दो भी है, भेद नहीं है। अब किस रूप में भेद है किस रूप में भेद नहीं है ये किंतु समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये तो समझना खूब सहज है, जो शंकर जी को जो फूल चढ़ाया जाता है धतूरा, धतूरा का बीज जो है वो खाने से आदमी पागल हो जाता है या मर जाता है, किंतु धतूरा में बीज कैसे क्यों है ये नहीं जाना जा सकता। पागल हो जाता है उसमें है वैसा चीज, किंतु क्यों है उसमें? आग में जलाने की शक्ति कैसे है? इस चीज में जलाने की शक्ति क्यों नहीं है? आग ऐसे टुन टुन नहीं बजती है क्यों? वो जला क्यों देती है? पानी सबको भिजा क्यों देता है? ये क्यों का उत्तर नहीं है। यही वस्तु शक्ति वस्तु से अलग और वस्तु से भिन्न भी है, अभिन्न भी है, एक होकर के दो है। कैसे है अपनी मेधा से नहीं जाना जाएगा। श्रुति अर्थापन्ना, गुरु परंपरागत जो श्रुतियां हैं उनके अनुसार में ऐसा समझ, वो भी नहीं समझेंगे बिना साधन के। तो एक वस्तु 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 शक्ति माझे किछु भेद नहीं, कृष्ण है वस्तु राधा जी हैं शक्ति, तो ये दो हैं। ये समझना कठिन है कि ये दोनों एक हैं, किंतु दोनों दो हैं ये समझना कठिन नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि दोनों दो हैं, आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? दोनों दो हैं ये तो समझ में आ रहा है, किंतु ये बड़ा भारी कठिन है जानना कि ये दोनों एक है। ये जानना, ब्रह्म को जानना बहुत सहज है,
ब्रह्म निर्गुण है, अनादि है, निष्क्रिय है, ये जानना सहज है, क्योंकि हम देखते ही नहीं है उसकी कोई क्रिया। देखते हैं कोई भी क्रिया नहीं है, अनादि, निष्क्रिय, अनंत, निर्गुण, ये सब हम लोग देख रहे हैं। किंतु वही परब्रह्म साक्षात अजन्मा होता हुई रूप है, निर्गुण होता हुआ भी उसमें लाखों अनंत अप्राकृत सद्गुण है, ये जानना बड़ा भारी कठिन। परब्रह्म परिपूर्ण स्वयं सिद्ध आत्माराम आप्तकाम होते हुए भी चोरी करता है, झूठ बोलता है, रोता कलपता है, प्रेम की भीख मांगता है, ये सब समझना बड़ा भारी कठिन है। ब्रह्मा जी निर्गुण ब्रह्म को जानते हैं, उनको कोई आश्चर्य नहीं होगा, नारायण को देख करके भी आश्चर्य नहीं होगा, किंतु कृष्ण की बालकवत लीलाओं को देख करके मोहित हो जाते हैं, ये कैसे वो ब्रह्म यहाँ पर झूठ बोल रहा है और बच्चों का जूठा खा रहा है, मैं भी किसी का जूठा नहीं खाता और ये परब्रह्म होकर के जूठा खाता है, झूठ बोलता है, इसकी भूख लगती है और ये अनजान की भांति इधर उधर में घूम रहा है, मैंने बच्चों को चुरा लिया, इसको पता तक नहीं, ये विचित्र बात। इसलिए भगवान का निर्विशेष रूप में कोई भी संदेह, कोई भी कुछ नहीं है अधिक, किंतु भगवान की इन लीलाओं को समझना, जानंत एव जानंतु किंग में बहुक्त्वा न पवो बप्सो बप्सो वैभवं तव गोचर। इसलिए वस्तु बक्ष शक्ति करें ये दो ना? और फिर करें ये कुछ भी भेद, ये बड़ा भारी कठिन है, इसको जान लेना। आग और आग की शक्ति ले लो,